நமோ அரிஹந்தாணம், நமோ சித்தாணம், நமோ ஆயரியாணம், நமோ உபாத்யாயாணம், நமோ லோயே சர்வ சாஹுடம். மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கௌதமோ கணி, மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ, ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வ மங்கள மாங்கல்யம், சர்வ கல்யாண காரகம், பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம், ஜெயனம் ஜயது சாசனம். நம ஸ்ரீ வர்தமானாய நிர்தூத கலிலாத்மனே, சாலோகானாம் த்ரிலோகானாம் யத வித்யாதர்பணாயதே. அஷ்டானிகா மகாபர்வ ஹே. சந்தியா கால மே சம்யக் தர்ஷன் கி அஷ்ட அங்கோ கி சர்ச்சா கரேங்கே. மஹல் பனனா தூசரி சீஜ் ஹே, ஓர் உஸ்கி நீவ் மஜ்பூத் ஹோனா யே அலக் பாத் ஹே. கபி கபி சைக்கலோஜிக்கல் ஹம் பஹுத் ஊஞ்சே பட் ஜாதே ஹே, ஓர் ஹம்கோ ஏசா லக்தா ஹே கி ஹம்கோ தோ சப் சமஜ் மே ஆ ரஹா ஹே, லேகின் அந்தர் சன்சே கா சர்ப் படா ரஹதா ஹே. கபி கபி क्षेत्र धर्म का होता है, हम धर्म क्षेत्र में रहते हैं और उसकी ही चर्चा करते हैं, उसके ही गुणगान करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अभिप्राय में कहें, इंटेंशन में कहें, उस जीव के मन में संशय रहता है. मैं ये बात आपको बहकाने के लिए नहीं बोल रहा. साइकोलॉजी पढ़ी है, चेहरों से मालूम पड़ता है कि किसके समझ में आ रहा है और किसके नहीं आ रहा. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सारी जिंदगी जैन शासन पढ़ाने वाले को जैन शासन की श्रद्धा नहीं होती. यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर होते हैं और जैन दर्शन पढ़ाते हैं. जैसे मुझको कोई ये कहे कि आप कबीरदास को पढ़ाओ तो मैं आसानी से पढ़ा सकता हूं. कबीरदास ही नहीं, भारत का कोई भी दर्शन फिलॉसफी, लेकिन मुझे श्रद्धा नहीं है उस पर. तो जैन दर्शन का जो बेस है वो विश्वास है. यदि विश्वास नहीं है तो जैन दर्शन ही शुरू नहीं होता जीवन में. बेटे आगे आ जाओ, छोटू आ गया, बच्चों को लाना चाहिए अधिक से अधिक. लौकिक जीवन का भविष्य कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वहां थोड़ा बहुत कम खाएंगे ऐसा नहीं है, इतना समय अंतर पड़ेगा कि कोई ज्यादा छोड़ के मरेगा, कोई कम छोड़कर मरेगा. जीवन जीने में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा रंच मात्र भी. लेकिन ये जैन दर्शन का जो भविष्य है वो इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है कि अल्पकाल में सिद्ध बनेगा. और जो लौकिक एजुकेशन कितना भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, वो जब देह छोड़कर अगली पर्याय में जाएगा, क्या नाम है भैया, समर्थ. अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा डिग्री, बीए, बीकॉम, बीएससी, अच्छा बीए, इसके बाद एमए किया, इसके बाद पीएचडी किया और फिर कहीं सर्विस लग गई, फिर जिंदगी खत्म हो गई. फिर अगली पर्याय में जब पैदा होगी तो एडमिशन एमए के बाद होगा या केजी से होगा? अनिल, लौकिक पढ़ाई का फल शून्य का शून्य है, लेकिन संस्कार यदि जैन दर्शन के रहे, जैन दर्शन के, तो वो वहां केजी में नहीं जाएगा, ये संस्कार उसके साथ जाएंगे. डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण। यदि सुई में डोरा डाल दे, सुई खो जाए तो मिल जाएगी जल्दी। तो डोरा माने जिनेंद्र के वचन, डोरा माने जिनेंद्र। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, मैं तो आपको खुली छूट दूंगा शाम को पूछने की। आपको प्रश्न किए हैं ग्रंथों के अंदर ऐसे। अब हम 2400 घंटे यदि जिन धर्म में रहे तो हमारा लौकिक जीवन कैसे चलेगा? उत्तर दिया है इसी रतनकंड श्रावकाचार में ऐसे, और मूल श्लोकों में लिखा है कि सम्यक दृष्टि दरिद्री नहीं होता, सम्यक दृष्टि अपंग नहीं होता, सम्यक दृष्टि नीच कुल में पैदा नहीं होता, सम्यक दृष्टि हीन अंग नहीं होता, नियम से उच्च कुल में पैदा होता है। अरे और तो और, यहां तक गारंटी दी है, ये कोई लोभ नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये जो मन में हमारे संशय पैदा होता है उसका समाधान है ये। एक प्रश्न ये भी किया है, बेटे छोटू आ गया, जाओ आ गया, शाबाश आ गया। कितने कितने वर्ष के हो, एज कितना आपका? अच्छा 10, चलो, क्योंकि 8 वर्ष से नीचे के थोड़ा समझने में मुश्किल है। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, बात समझना। ये तो अभी यदि हमने इस मार्ग में बच्चों को नहीं लगाया तो समझना गुरुदेव क्षमा नहीं करेंगे कभी, क्योंकि हम सब तो जाने वाले हैं धीरे धीरे, लेकिन इन्हीं के हाथ में ध्वजा रहेगी आगे भविष्य की। तो बच्चों को बलपूर्वक भेजो, बलपूर्वक। और मेरा चैलेंज है, मेरे पास साइकोलॉजी के प्रयोग हैं, अब मैं आपको आपके बच्चों को यहीं से करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पीछे से वैसे ही बोल रहा हूं आपको। जिन बच्चों को कुछ भी याद नहीं होता वो 20-20 पेज 5 मिनट में सुनाकर गए हैं, केवल उपयोग की स्थिरता की कला से। जैन दर्शन में सब है, बात चल रही है अभी अपनी निशंकित अंग की। तो सदा सुख दास जी से प्रश्न किया गया, यदि हमने यहां समय लगाया तो हमारे लौकिक क्षेत्र की आजीविका कौन करेगा, फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? तो सदा सुखदास जी उत्तर देते हैं ग्रंथ में कि जिसके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ है, वो वन में रहे या भवन में रहे, उसको उतना नियम से मिलेगा। और इतना तो निश्चित है कि जैन कुल में जन्म लेकर जीव कोई भी धरती पर भूखा नहीं सोता। अरे आपको नहीं पता, आपने नहीं सोचा होगा, दुनिया में जितने भिखारी होते हैं उनमें जैनी कितने होते हैं? आपको एक भी जैन भिखारी मिलेगा क्या दुनिया में? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जैनी इतना पुण्य तो जैन शासन में अपने कुल में लेकर आता है कि वो लेने वाला नहीं देने वाला बनता है। उसके अंदर इस तरह का प्रभावना और पुण्य का नियोग होता है। अब अपना विषय अपन प्रारंभ करते हैं। ज्ञान और चारित्र की चर्चा तो हर मत करता है, वो भी गलत, लेकिन जैन दर्शन में सम्यक दर्शन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सम्यक दर्शन कहें, सरल भाषा में कहें, बिलीव, विश्वास अंदर से। और ये सम्यक दर्शन जिसको होता है, उसके सम्यक दर्शन होने के बाद या सम्यक दर्शन होते ही उसके जीवन में 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 8। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे आओ, मुझे बार बार बुलाना पड़ेगा, बच्चों को आगे बैठाया करो, आगे आकर। हाँ समझ में आएगा। और स्कूल की पढ़ाई इतनी कठिन है कि आदमी पागल हो जाए, वो समझ में आ जाती है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, और सम्यक दर्शन जिसको हो उससे पूर्व भी, उससे पूर्व भी उसके डिसीजन में, व्यवहार में, व्यवहार का अर्थ यहां सच्चे आठ अंग तो सम्यक दृष्टि को ही होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन होने से पूर्व भी उसके मन में ऐसा विश्वास आ जाता है कि जैन दर्शन ही परम सत्य है। तो पहले अंग का नाम है, मिलकर बोलेंगे सब, निशंकित अंग। क्या बोला? निशंकित अंग का अर्थ है संशय नहीं होना, डाउट नहीं होना। मन ही मन में हमारे डाउट चलता है। कभी कभी मैंने दो विद्वानों के मुख से ऐसी चर्चा सुनते देखा रात को 2 बजे, जो जैन धर्म हम पढ़ रहे हैं, हम दुनिया को कल्पना कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी कल्पना में झूम रहे हो? कमाल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो जब तक संशय है तब तक आप कितना भी पढ़ो, कितना भी सुनो, वो हल्का फुल्का पुण्य बंधेगा, लेकिन वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है और वो जैन धर्म का फल भी प्राप्त नहीं कर सकता। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में वही व्यक्ति तो जाएगा फॉर्म भरने, पैसे निकालने, जिसको ये विश्वास है कि मेरे अकाउंट में पैसा है, अंदर से बिलीव, विश्वास। तो दुनिया की जितनी भी थ्योरी है, कोई भी साइंस है, वो नई है और जैन दर्शन अनादि है। हमारे भगवान ने आपको, बेटे आप सब 8th क्लास, कोई 7th इसी में पढ़ रहे होंगे ना आप, 6th 7th, आपने देखा होगा 8th क्लास में हमारे यहां इलाहाबाद बोर्ड लगता है, इलाहाबाद बोर्ड, उसमें ये सिखाया जाता है कि डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने ये सिखाया, लोगों को बताया कि पेड़ पौधों में जीव होता है, लेकिन हमारे सर्वज्ञ भगवान तो अनादि से ही ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में जीव है। तो जैन दर्शन का जो साइंस है, वो जो जैन दर्शन है, वो अनादि अनंत है। वो साइंस है, वो नई है और वो भी पूरी सत्य हो ऐसा नहीं है। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिन ये लिखा आता है, विदाउट आयोडीन लेस जो सॉल्ट इज पॉइजन, माने विदाउट जो आयोडीन होती है, आयोडीन रहित नमक जहर है। और दूसरे दिन ये लिखा आता है, विद आयोडीन, माने आयोडीन सहित नमक वो जहर है। कौन सी थ्योरी को सत्य मानेगा? नेचुरोपैथी ये कहती है दो प्रोटीन एक साथ मत खाओ, और आधुनिक साइंस ये कहती है कि सब मिलाकर खाओ। किसको सत्य माने? इसका मतलब यह है, आधुनिक साइंस ये कहती है कि चांद, सूरज, पृथ्वी घूमती है। हमारा जैन दर्शन ये कहता है पृथ्वी स्थिर है और चांद, सूरज उसकी ओर परिक्रमा करते हैं, मेरु की ओर। बहुत सारे प्रश्न हैं, आप करोगे तो मैं उसका समाधान बाद में आपको समय देंगे। अभी जो हम यहां ले रहे हैं, निशंकित अंग के विषय में ले रहे हैं। तो निशंकित अंग के विषय में भगवान क्या कहते हैं, पहले पढ़ते हैं अपन 11वें नंबर का श्लोक। संस्कृत पढ़ोगे हमारे साथ? देखिए सामने देखिए, आपको दिखाई देगा। इदमेव दृशम चैवम, पढ़िए, इदमेवे दृशम चैव तत्वम नान्यन्य चान्य था। दिखाई नहीं दे रहा उधर? अच्छा, 19 में तो कथा है, वो बाद में बताऊंगा। आ गया, इदमे वेदृशम चैव तत्वम नान्यन्य चान्यथा इत्यकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। अहीं तत्वभूत आप्त आगम અને ગુરુને જે લક્ષણ બતાવ્યું જે તે જ સત્યાર્થ સ્વરૂપ છે. એ સમ્યક માને જો દેવશાસ્ત્ર ગુરુ કા લક્ષણ બતાયા ઓર દેવશાસ્ત્ર ગુરુને જો તત્વ બતાયા વો એસા હી હૈ અન્યથા નહીં હૈ. ઓર ઈદૃશમ ચૈવ એટલે કે આમ જ છે એસા હી હૈ બીજી રીતે નથી. એવા તલવારની ધારણા પાણીની જેવ સન્માર્ગમાં સંશયા રહિત અકંપ રુચિ એટલે શ્રદ્ધાન હોવું તે નિશંકિત અંગ નામનો ગુણ છે. બોલો કમાલ હૈ. જૈસા બેટે ખેલો નહીં, હમારી તરફ દેખો આપ, ખેલોનો સે મત ખેલો. આપકો સમજ મે આ રહા હૈ? થોડા બહોત કઠિન લગ રહા હૈ? અભી સુનાઉંગા કથા, ઇધર એસે બેઠો. શાબાશ. અને બાત સમજના ધ્યાનપૂર્વક. સર્વજ્ઞ ભગવાનને જૈસા કહા હૈ વસ્તુ તત્વ એસા હી હૈ અન્યથા નહીં હૈ. ઇસી પ્રકાર હૈ અરે વિશ્વ એક તરફ હો જાય ઓર પૂરા વિશ્વ મિલકર જૈન દર્શન કો જુટલાના ચાહે તો વો કભી પોસિબલ નહીં હૈ. પૂરા વિશ્વ કા તત્વ તો અન્યથા હો સકતા હૈ, વો અન્યથા હી હૈ, લેકિન ભગવાન કા બતાયા માર્ગ અન્યથા નહીં હો સકતા. બતાવો વિધે ક્ષેત્ર મે સીમંદર ભગવાન હૈ યા નહીં? બોલો હૈ. યે કિસને દેખા? હમ તો ગયે નહીં દેખને, લેકિન સર્વજ્ઞ ને કહા હૈ ઓર હમે આગમ સે નિશ્ચિત હોતા હૈ. વર્તમાન સાયન્સ તો યે કહેતી હૈ કે દેહ છૂટને કે બાદ દેહ છૂટ ગયા ઓર દેહ છૂટતે હી કોઈ ફર આત્મા આત્મા નહીં હૈ, સબ ખતમ હો જાતા હૈ. લેકિન યે સબ વર્તમાન મે ભી દેખા જાતા હૈ. બહોત બાર દેખા ગયા હૈ કે યહાં વ્યક્તિ કા મરણ હુઆ ઓર વો અગલી પર્યાય મે દૂસરે મોહલ્લે મે હી પેદા હો જાતા હૈ ઓર વો અપને પૂર્વ જન્મ કી બાતે લોગો કો બતાતા હૈ. ઇસસે સિદ્ધ હોતા હૈ કે આત્મા અનાદિ અનંત એક સત્ય પદાર્થ હૈ. એસા મન મે સંશય નહીં હોના. સુબહ ગુરુદેવ કે પ્રવચન મે આયા, ભાઈ હો ગયા તૈયાર હો ગયા વો? અજા गुरुदेव के प्रवचन में सुबह आया कि पैसा पुरुषार्थ से नहीं आता, पैसा पुण्य से आता है. इस बात का विश्वास है या नहीं? बोलो. अच्छा है तो छह महीना प्रयोग करके देखो और कोई भी अपने बिजनेस व्यापार में मत जाओ. मैं हर जगह बोलता हूं वाली बात. हम सारी बात थ्योरिकली क्यों करते हैं, प्रयोग में क्यों नहीं लाते सारी बात को? લેતા હું ઇસકો. હમ સારી વાત પૂરી થ્યોરી કી કરના ચાહતે હૈ, લેકિન યે જિનવાણી કા ચેલેન્જ હૈ કે આપ 6 મહિને સીખ માનો ઓર પ્રયોગ કરો, આપકા કુછ નહીં બિગડેગા. ચંદ્રગુપ્ત કે સાથ એસા હુઆ. મુનિરાજ ચંદ્રગુપ્ત 12 વર્ષ કા અકાલ પડા ઓર મુનિ અન્ય મુનિ સબ અન્ય જગે ચલે ગઈ ઓર એસે અકાલ કે સમય ભી જબ ખાને કો ભોજન નહીં તો દેવો ને વન મે નગર બસાકર ઉનકો આહાર દિયા. 12 વર્ષ બાદ પતા પડી અરે સત્ય તો યે હૈ કે જો આરાધના કે માર્ગ મે લગતા હૈ ઉસકે સંયોગો કી ચિંતા દેવ લોક કરતે હૈ, ઉસકો નહીં કરના પડતા. એસા ગજબ બાત હૈ. તો તત્વ યહી હૈ, મે આત્મા હું, દેહ નહીં હું, મેરા મરણ નહીં હોગા, મે અજર અમર તત્વ હું, મુજે મુક્તિ જાના હૈ, મેં એક ચૈતન્ય વસ્તુ હું. એસી સર્વજ્ઞ ભગવાન કે વચન કી પક્કી શ્રદ્ધા હોના, ઇસકા નામ ક્યા હૈ? નિશંકિત અંગ. બહોત સ્થૂલ વિષય લે રહા હું મેં બચ્ચો કી વજહ સે. અભી અબ ઇસ નિશંકિત અંગ મે કોન પ્રસિદ્ધ હુઆ? અંજન ચોર. દેખિયે 19વા નંબર કા શ્લોક નિકાલો. 19 નંબર હૈ. અને યે વાત કેવલ કોઈ સાધારણ વ્યક્તિને નહીં કહી, સમંત ભદ્રાચાર્ય ને કહી. 19 નંબર મે હૈ. अब पढ़ते हैं और फिर एक एक कथा डेली आपको सुनाएंगे, वो भी तत्व ज्ञान सहित उसको समझना। ताव दंजन चोरांगे, बोलिए, ततो नंतमति स्मृता, उद्यायनस्तृतीयेपि तुरिये रेवती मता, ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो बारिसेनस्ततः परः, विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यताम् गतौ। माने सम्यक दर्शन के अंग में जो प्रसिद्ध हुए वो हुए अंजन चोर, वो भी चोर। अभी चोर की कथा क्या है और कैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, ये समझने जैसा है। बच्चों समझना है आपको, जल्दी बोलो। एक दो मित्र थे, अब ये मेरा सिस्टम यहां चलेगा नहीं चलेगा भगवान जाने, देखते हैं। मैं क्या थोड़ा बच्चों के हिसाब से मैंने मानस बनाया था। हाँ, दो मित्र थे, वो भी मध्य लोक में दो मित्र थे, और उसमें एक का नाम था अमित कीर्ति और एक का नाम था विद्युत प्रभु। बहुत समझने जैसा है। आप जानते हैं जगत में सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं कि जो एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर लगाए। देखा जाए वास्तव में तो दोनों मरकर देवगति में गई। उधर हुआ ऐसा कि हमेशा एक देव को ऐसा भाव रहता था कि मेरा मित्र कैसे भी सम्यक दृष्टि बन जाए, क्योंकि एक सम्यक दृष्टि था और एक उसमें मिथ्या दृष्टि था। जो मिथ्या दृष्टि था उसका नाम था विद्युत प्रभु, और जो सम्यक दृष्टि था उसका नाम था अमित प्रभु। वो दोनों मध्य लोक में आई, और इधर जब मध्य लोक में आई तो वो जब नीचे पहुंची तो उन्होंने सम्यक दृष्टि देव ने मिथ्या दृष्टि देव को ये कहा कि हमारे मुनिराज तो बहुत दूर, हमारी सम्यक दृष्टि के ध्यान को भी तुम विचलित नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? कि हां ऐसा होता है। बस इधर मिथ्या दृष्टि देव बोला कि नहीं, मिथ्यात्व सहित तप भी कार्यकारी है। हुआ ये, सबसे पहले वो एक ऐसे व्यक्ति के पास गई जो मिथ्यात्व सहित ध्यान करता था। बच्चों इधर देखो, आप आपको समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं लग रहा विषय, बहुत सरल कर रहा हूं, आपकी वजह से सरल कर रहा हूं। एक साधु थे, उनका नाम था जमात अग्नि, और करोड़ों वर्ष तप करते करते हो गया, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई। एक वर्ष में एक बार भोजन करते थे। तो दोनों देवों ने उनकी परीक्षा ली, एक ने चिड़िया का रूप बनाया और एक ने चिरौटा का रूप बनाया, और उसकी दाढ़ी में रहने लगे दोनों। तो चिड़िया उड़ चिरौटा जाने लगा, और वो चिड़िया को ये कहने लगा कि तुम दाढ़ी में सुरक्षित रहना, मैं परदेश जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा, यदि तुम वापस नहीं आई तो। बोले नहीं तुम्हारी कसम। बोले नहीं सच बोलो, मेरी कसम मत खाओ, यदि मैं वापस नहीं आऊं तो मेरी वो गति हो जो इस साधु की हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये सुनते ही जो करोड़ों वर्ष से तप कर रहा था वो साधु एकदम भड़क गया, और दोनों चिड़िया चिरौटाओं को कसके पकड़ लिया, और वो कहने लगा, ये कथा भी हरिवंश पुराण में आती है, क्या मेरी तपस्या तुम्हें इतनी खोटी लगी कि जो मेरे तप की कसम खा रहे हो? कि महाराज वो तो प्रकट हो ही गया ना एक सेकंड में। अब वो सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि देव जो विद्युत प्रव अमित प्रव था, अब वो दूसरी जगह विद्युत प्रभ को ले जाता है प्रश्न बाद में अभी। और इधर ये एक सेठ थे जिनदत्त, मगध देश में राजगृही नगर में रहते थे। कहां रहते थे? राजगृही नगर में रहते थे। और इधर राजगृही नगर में जिन शासन की पूजन करते थे, दान देते थे, तरह तरह से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते थे, प्रतिदिन देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, इस सब में लीन रहते थे। और अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में सामायिक करते थे। वो जिनेंद्र दत्त सेठ, आज भी क्या कौन सा दिन है? अष्टमी का। वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आत्म ध्यान में लीन थी, आत्म ध्यान में। और इधर वो दोनों देव आए तो विद्युत प्रभ देव ने, कमाल की बात है, कोई साधारण श्रावक रात को चतुर्दशी में शमशान में सामायिक कर सकता है क्या? ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये पॉसिबल है। आत्मज्ञान के बल से कोई भी जीव सामायिक कर सकता है। आत्म ध्यान में लीन थे। इधर इन्होंने सारी रात भीषण उपसर्ग किया, सारी रात विद्युत प्रभ ने, लेकिन वो ध्यान से चलायमान नहीं हुए। जब अंत में थक गया वो देव, थकने के बाद सेठ जी को नमस्कार किया, बोले आपने ये ध्यान की कला कहां से सीखी? आप कैसे ध्यान करते हो? और प्रसन्न होकर सेठ जिनदत्त को आकाशगामनी विद्या प्रदान की। आकाश में अभी यहां बैठी बैठी एक सेकंड में मेरु पर्वत उड़कर चले जाएं, एक सेकंड के अंदर नंदीश्वर द्वीप चले जाएं, ऐसे आकाश में उड़ने की विद्या प्रदान की। खुश होकर विद्या दी। अब वो क्या करते विद्या का? तो प्रतिदिन, और साथ में ये भी कहा, सेठ जी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रभावित होकर तुमको ये विद्या प्रदान कर रहा हूं, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति यदि इस विद्या को सिद्ध करेगा तो उसे एक रस्सी की तराजू में बैठना है, तराजू होती है ना, और उसमें 108 धागे लगे रहेंगे, और एक बार नमोकार मंत्र बोलेगा और रस्सी को तोड़ेगा, एक बार नमोकार मंत्र बोलेगा फिर रस्सी को तोड़ेगा, और नीचे बड़े बड़े नुकीले कांटे लगे रहते हैं, त्रिशूल लगे हैं। जरा कल्पना करना आप, आयु कर्म से ही मरण होता है, ये पक्की बात है? बोलो, ये पक्की बात है। तो कल को एक तराजू लटकाते हम यहां, और फिर ये प्रयोग करके देखो, अंदर संशय लगेगा अपने को। सेठ जी तुरंत अपनी आकाशगामनी विद्या को सिद्ध करने के लिए कि मुझे विद्या सिद्ध हुई है, मेरु पर्वत पर दर्शन करने गए। सबसे पहले जो आपने पंच मेरु बनाए हैं ऊपर दर्शन करने गए। दर्शन करके अत्यंत प्रभावित हुए। अब तो वो प्रतिदिन अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने जाने लगे। प्रतिदिन एक सामान्य श्रावक जिनेंद्र भगवान के अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने जाए, ये कितने आश्चर्य की बात है, वो भी आकाश मार्ग से, ये कमाल है। अभी भी लोगों को ये भी विश्वास नहीं है कि कुंद कुंद आचार्य विधि क्षेत्र गए थे, लोगों को ये विश्वास नहीं है। ये सब पवित्रता के बल से ऐसी रिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं, पर ज्ञानियों को इन रिद्धि का प्रेम नहीं होता, रंच मात्र भी। उनका माली छुप छुप कर देखता था, इस सेठ जी डेली जाते कहां हैं, उनके घर में माली रहता था, और वो छुप छुप कर देखता था कि सेठ जी जाते कहां हैं। बस एक दिन सेठ जी के हाथ जोड़कर पूछा कि सेठ जी हमें ये बताओ, आप प्रतिदिन जाते कहां हो? आप ध्यान में बैठते हो और गायब हो जाते हो, और मैं ढूंढता ही रहता हूं कहां गए, कि किसी को बताना नहीं, मैं अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने जाता हूं। कमाल है ये, कोई बिना विश्वास के कैसे पॉसिबल है ये? ये नंदीश्वर द्वीप है, पंचमेरु है, स्वर्ग है, नरक है, ये इस बात पे अभी कहां लोगों को विश्वास है, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, ऐसा लोग बोलते हैं। उस माली को विश्वास नहीं हुआ और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी ये विद्या मुझे भी दे दो, मैं भी आकाश में उड़ के जाऊंगा। जिन धर्मी था सेठ, उन्होंने कहा मुझे तो देव ने दी है विद्या, लेकिन तुम्हें सिद्ध करनी पड़ेगी। मुझे सिद्ध करनी पड़ेगी कि हाँ, वो कैसे होगी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शमशान में एक तराजू में तुमको बैठना है और उसमें 108 धागे लगाना है, एक बार नमोकार मंत्र बोलने पर एक धागा तोड़ना है और नीचे बड़े बड़े त्रिशूल लगाने हैं आग लगाकर। बोले महाराज फिर सिद्ध हो जाएगी? कि हाँ, ये कहकर चला गया। अब जब चतुर्दशी की रात आई तो माली बड़े बड़े त्रिशूल लगाकर उस तराजू के ऊपर बैठ गया। अब नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम, अब कथा तो कथा होती है, स्थूल कथन आते कथाओं में, यहां क्या बताना चाहते हैं कि उसे जैन धर्म पे विश्वास है या नहीं। अब वो चाकू से जैसे ही करे, उसको ऐसा लगे कहीं ऐसा ना हुआ कि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो बेमौत मारी जाए। घंटों हो गई, कभी ऊपर चढ़े कभी नीचे उतरे, कभी ऊपर चढ़े कभी नीचे उतरे, बस पसीना बह रहे हैं उसको। आप जानते हो अंदर हम सच में कितने बड़े धर्मात्मा हैं, इसका निर्णय पाप के उदय में होता है। जब हमारी तीव्र पाप का उदय आए तब मालूम पड़ता है हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। जिस समय खाने को समय पर मिल रहा है, हर कोई कह सकता है कि मुझे आत्मा की रुचि है। हर कोई अभी यहां भूकंप आए और ये पूरी धरती हिले, बताइए तो क्या होगा? भागेगा व्यक्ति सबसे पहले, यहां से सबसे पहले भागेगा, उसको डर लगता है। कोई बम ना फेंक दे, अरे मैं तो अजर अमर तत्व हूं, मर गए मारने वाली, वो विद्या सिद्ध नहीं कर पाया। इधर क्या घटना घटी, उसी राजग्रही नगरी में एक अंजन चोर था। क्या नाम था? सुनाए नाम आपने बच्चों, कथा में आया समंतभद्र आचार्य, सुबह गुरुदेव श्री ने भी अंजन चोर के विषय में बताया, वो अन्य प्रकरणों में बताया, वो भी मैं बताऊंगा आपको। उस पर एक ऐसी विद्या थी कि वो अंजन लगाता था आंखों में और वो गायब हो जाता था। ऐसी चोरी आराम से चोरी कर ले, और वो एक वेश्या के पास डेली जाता था। चोर कहां जाएगा? वेश्या के पास। तो उस वेश्या ने ये कहा, कल को तुम मेरे पास तब आना कि जब रानी का हार चुरा कर लाना, वो हार पहनूंगी तब मेरे से बात करना। अभी तो चोर, उसने कहा मेरे लिए क्या बड़ी बात है, उसने आंखों में अंजन लगाया और घुस गया रानी के महल में और उस हार को चुरा लिया। लेकिन वो हार बहुत ही कीमती था, चमकता था, डायमंड था प्योर। यहां सब डायमंड वाले लोग हैं काफी, एक सत्य बात बता रहा हूं आपको, वर्तमान में जिसे आदमी डायमंड कह रहा है वो डायमंड है ही नहीं। क्यों? रत्न जिनको कह रहा है, ये सब ब्लैकमेलिंग हो रही है डटकर। सोने की तो रीसेल है, रीवैल्यू है, डायमंड की नहीं है। ये तो जिसे आप डायमंड कह रहे हो उसे टॉर्च से देख रहे हैं, जो स्वयं प्रकाश फैलाता है उसे वो उसे टॉर्च से देख रहे हैं खुद उल्टा। वो सच्चा रत्न कैसे हो सकता है? इधर इसका हार चमक रहा और पीछे पुलिस वाले भागे पकड़ने के लिए अंजन चोर को। बच्चों खेल मत करो, सुनो इधर। इसने डर की वजह से उस हार को फेंक दिया और डर की वजह से हार फेंका, फेंकते ही और वो दौड़ लगाकर भागा। जैसे ही दौड़ लगाकर भागा, पुलिस को हार मिल गया। उन्होंने सोचा कि अब छोड़ो, अब क्या पीछे पड़ना। वो भागता भागता शमशान में पहुंचा और शमशान में जब पहुंचा तो वहां शमशान में देखा कि माली ये ड्रामा कर रहा था। बार बार नीचे चढ़े ऊपर उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे। वो चोर जरूर था, लेकिन उसे ये पता था कि जिन धर्म परम सत्य है। चोर तो था लेकिन जैन धर्म की उसको स्थूल श्रद्धा तो थी। उसने माली से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? सुबह होने वाली थी, सारी रात करते करते उसने पूरी कथा बता दी कि मेरे सेठ जी डेली आकाशगामनी विद्या से सुमेरु पर्वत के दर्शन करने जाते हैं, अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने जाते हैं, और उन्होंने मुझे ये विद्या सिद्ध करने की विधि बताई है। और विधि ये है, अंजन चोर बोला तुम पहले नीचे उतरो, तुम नीचे उतरो, ऐसा बोले मंत्र तो सीख लो, बोले मंत्र मंत्र गया नीचे, तुम नीचे उतरो, ये रीति नीचे उतरो। वो तुरंत पल्ले पर बैठ गया उस पर, और मन में उसके देखो बाहर से वो चोरी का व्यवसाय था, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके मन में ये रंच मात्र संशय नहीं था, रंच मात्र भी संशय नहीं था कि जैन धर्म अन्यथा है, हम पाप करते हैं, पाप का फल लगेगा, यदि ये हमें श्रद्धा हो निशंक रूप से तो व्यक्ति आधे पाप करना तत्काल छोड़ दे, तत्काल ही। इधर उसने 108 बार उस डोरियों को अलग करना था, लेकिन 108 बार नहीं, उसने तो एक बार में ही नमोकार मंत्र भी उसको नहीं आता था, और केवल अरहंत भगवान को नमस्कार किया, और केवल ये शब्द मन में बोला कि सेठ के वचन प्रमाण हो और सर्वज्ञ का शासन महासत्य है, ऐसा जानकर उसकी सारी डोरियां एक साथ अलग कर दी। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला था, आकाश गामनी विद्या ने आकर उसे आकाश में अधर उठा लिया और उसको नमस्कार किया कि जिन शासन की दृढ़ श्रद्धा के लिए तुमको परम नमस्कार हो, जाओ तुम कहीं भी धरती पे विचरण करो। उस सेठ ने आकाश गामनी विद्या को आदेश दिया कि विद्या क्या होती है, इनके देव मालिक होते हैं, देवियां देव, कि मुझे वहां ले चलो जहां सेठ जी गए हैं दर्शन करने। वो विद्या उनको मेरू पर्वत पर ले गई और सेठ जी को नमस्कार किया। सेठ जी को नमस्कार करने पर बोले आप कैसे, कौन हो आप? बोले महाराज मैं आपका शिष्य हूं। मेरे शिष्य कैसे हो सकते हो कि तुम्ही ने मुझे आकाश गामनी विद्या प्रदान की है? बोले कैसी बात करते हो? बोले मैं मगध का प्रसिद्ध चोर अंजन, और ऐसी ऐसी कथा बनी और मुझे आकाश गामनी विद्या सिद्ध हुई है। सेठ जी आपने मुझे आकाश में उड़ना तो सिखा दिया, लेकिन मुझे भव से पार उतरने की कला सिखा दो। बस वहीं मेरू पर्वत पर सेठ जी के चरणों में बैठ गया। कौन? अंजन चोर। और सेठ जी उसको उपदेश देने लगते हैं उसको कि ही अंजन चोर तू सुन, तू भव्य है, तू अपने इस बात को ध्यान पूर्वक चित्त से सुन कि तूने अनंत जन्मों में अनंत पाप कर्म किए हैं, अनंत कष्ट उठाए हैं तूने अनंत जन्मों में, लेकिन आत्मा तो एक शाश्वत चैतन्य परम तत्व है, तू चोरी करने वाला नहीं है, तू कर्म काटकर मोक्ष जा सकता है, तुझ में ऐसी शक्ति है, तू अपने आप को पहचान, तू अपने आप को पहचान। वो अंजन चोर सेठ जी के वचनों को सुनता रहा कि अरे इस भव के कष्टों की तू क्या बात करता है, नरकों में तूने इतने अनंत कष्ट उठाए हैं, इतने अनंत कष्ट उठाए हैं कि जिसकी कल्पना करें तो गणधर भी सारे जीवन उन कष्टों की चर्चा करें तो वो कष्ट पूरे नहीं हो सकते, इतने कष्ट तूने उठाए हैं, तू ऐसे आधा कर्म करता है, चोरी करता है। अंजन चोर की आंखों से आंसू बहते गए, वो सेठ जी के वचन सुनता गए, सुनते गए, उसके चित्त में इतना वैराग्य जागा, इतना वैराग्य जागा। इधर चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश गामनी विद्या से ही सुमेरु पर्वत पे दर्शन करने आए। आप लोगों को कल्पना लग रही होगी लेकिन ये रियल सत्य है, रियल सत्य है। व्यक्ति के अंदर जब पवित्रता बढ़ती है तब उसके संशय का समाधान स्वयं ही होने लगता है। एक आपने साइकोलॉजी का नियम सुना होगा, लोग व्यवहार में भी, व्यक्ति जिस चीज को मन से चाहता है वो चीज उसे अवश्य मिलती है। एक बार यदि हम आत्म कल्याण मन से चाहें तो विश्व में कोई ताकत ऐसी नहीं है कि व्यक्ति के आत्म कल्याण को रोक दे, ये गारंटी है। वो चारण रिद्धि मुनिराज आए, उनके चरणों में उपदेश सुना तो अंजन चोर का पूर्व का भविष्य बताया उन रिद्धिधारी मुनिराजों ने। उस अंजन चोर ने मुनिराजों से पूछा, प्रभु मुझे ये बताओ कि मैं इस भव में चोर क्यों बना। तब वो मुनिराज ये कहते हैं कि पूर्व पर्याय में तुम्हारा एक सेठ थी और तुम्हारा भाव ऐसा रहता था कि जगत भूखा मरे अनाजों को इकट्ठा कर करके रख लेती थी। अभी होता ना वर्तमान में एक एक हजार बोरा रख लिया, उनमें कीड़े पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन उसे बेचते नहीं है। इस तरह कंजूसी पूर्वक धन संचय किया जिसके फल में इस पर्याय में तुम निर्धन बने और आत्मा की विराधना करके जीवन यापन कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ काल आया है, तुम आत्मा का कल्याण करो। आपको आश्चर्य होगा, उस अंजन चोर को सम्यक दर्शन तो हुआ ही हुआ, वही तत्काल वस्त्र उतारे, केस लॉन्च किया और दिगंबर दशा अंगीकार कर ली अंजन चोर ने। इधर सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं अकृत्रिम जिनालियों के दर्शन ही करता रह गया और अंजन चोर आत्मा का कल्याण कर लिया और मुनिराज बन गए। यहां इतने लोग बैठे हैं, कभी भी मन में ऐसा मत सोचना। आपने देखा होगा कभी कभी नए लोग मंदिर में आते हैं तो जो पुराने पुजारी हैं उन्हें ऐसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कोई निगोदिया आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि एक नया व्यक्ति बिल्कुल उसको अभी अभी आया हो और हो सकता है अंतर मुहूर्त में वो आत्मा का कल्याण कर ले। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसका सारा जीवन निकल गया हो उसके मन में संशय ही हो, संशय ही हो। हम आपको सत्य कह रहे हैं, विश्व की कोई भी थ्योरी, विश्व का कोई भी विज्ञान जैन शासन के आगे फीका है, झूठा है। आप प्रयोग करो, आज अष्टमी का दिन है, स्वाध्याय के बाद कहीं जाओ मत, यहां प्रयोग करो, सामायिक करो, आत्मा का ध्यान करो, आंख बंद करके बैठो, मन में देखो, सीमंदर भगवान आपको साक्षात नजर आएंगे। अभी जब भी मन आपको ऐसा लगे कि हमारा मन निराश हो गया जगत से, दुनिया में अविश्वास पैदा होता है, हमको ऐसा लगता है, उसी समय जिनेश्वर देव को याद करो, तत्व का स्वाध्याय करो, ज्ञानाभ्यास करो, आपकी सारी निराशा मिट जाएगी। निराशा ही नहीं मिटेगी, आपने अकलंक का नाम सुना बेटे? अकलंक का वो उनके विषय में ऐसा आता है कि बौद्ध गुरुओं ने उनको ये कहा कि हम तुम्हारी तलवार से गर्दन अलग करेंगे, लेकिन तुम केवल या तो ये कह दो कि जैन धर्म असत्य है, वरना हम तुम्हारी तलवार से गर्दन अलग कर देंगे। तो अकलंक ने चीख कर कहा, गुरुजी जब तुमने मुझे ये जान ही लिया है कि हम जैन हैं, तो तुम जिस देह को अलग करने की बात करते हो तो करो, भले ही आकाश पाताल एक हो जाए, धरती भस्म हो जाए, सूरज ठंडा हो जाए, चांद गर्म हो जाए, लेकिन जिन शासन के ये पुत्र अकलंक निकलंक कवि जैन दर्शन को छोड़कर अन्य दर्शन का सेवन नहीं कर सकते। इसको निशंकित अंग कहते हैं। मैं इसके कुछ आपको दो चार बिंदु बता रहा हूं। मान लीजिए आप बीमार हो जाएं और कैंसर जैसी स्थिति खड़ी हो जाए, आज घर घर में ऐसा हो रहा है, आज 100 घर में से एक घर में कैंसर मिलेगा आपको, उस समय व्यक्ति निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उसे कोई मार्ग नजर नहीं आता, उस समय मालूम पड़ता है कि हमें जैन दर्शन की श्रद्धा है या नहीं है। उस समय डॉक्टर आकर आपको रेड रंग का कैप्सूल दे खाने के लिए जिस पे लाल रंग का निशान लगा है, बोलो खाओगे या नहीं खाओगे, अरे बोलो, उस समय मालूम पड़ेगा, उस समय मालूम पड़ेगा। 85 वर्ष में किडनी फेल हो गई, लेकिन हम गरीब की किडनी या किसी की किडनी लेकर हमने जिएंगे तो कितना जिएंगे, लेकिन यदि हमें निशंकित अंग है हमारे अंदर और जैन दर्शन का अटूट विश्वास है तो करोड़ों प्रतिकूलताएं आ जाएं, कितनी करोड़ों प्रतिकूलताएं आ जाएं, करोड़ों प्रतिकूलता के काल में भी उसका चेहरा खिलता रहेगा और उसका चेहरा हंसता रहेगा जबरदस्त। इधर एक सच्ची घटना है, पंडित कैलाश चंद जी बहुत अद्भुत जीव हुए हैं, सबको मालूम है, गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त थे। उनको कुछ उनकी लड़की को ऐसी तकलीफ थी जो अभी मुजफ्फरनगर रहती है, तो हमारे मन में तरह तरह के संशय पैदा हो जाते हैं। कभी कभी कोई हमको ये बहका देता है कि तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, वह छत्र चढ़ा दो, वह चवर चढ़ा दो, वहां एक दीपक जला दो, वहां एक चादर चढ़ा दो, वहां जाकर एक परिक्रमा कर आओ, जब मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर जैन दर्शन का अटूट विश्वास है या नहीं। आपका एक लौता बेटा हो, वो मरणासन्न अवस्था में पड़ा हो, और कोई आपको ये कहे कि बस एक दीपक जाकर उधर जला दो और तुम्हारा लड़का उठकर बैठ जाएगा, बताओ ऐसा करोगे या नहीं करोगे? बोलो। ये तो आप मन से ही पूछो। जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हो कि आपके आगे कोई पिस्तौल लेकर खड़ा हो जाए, बेटे सुनो इधर, बंदूक लेकर, और ये कहे कि इस देवता को नमस्कार करो वरना गर्दन उड़ा देंगे, ये आप मानसिक प्रयोग करके देखिए आप इस बात का, तो आपको मालूम पड़ेगा इस देवता को नमस्कार करो वरना तुम्हारे अंदर आग लगा देंगे। बताओ आप उस समय नमस्कार करोगे या नहीं करोगे? ये मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि निशंकित अंग है तो शरीर के करोड़ों टुकड़े भी कर दे कोई, करोड़ों भी छिन्न भिन्न कर दे, देह में आग लगा दे, उसको बंदी गृह में डाल दे, तो भी उसका चित्त दूसरी जगह नहीं मुड़ेगा, दूसरी जगह मुड़ नहीं सकता। इसका नाम, ये तो स्थूल बाहर में ऐसी उसके अंदर श्रद्धा होती है, और अंतरंग में आत्मा का परम विश्वास होता है, और ऐसा विश्वास होता है कि उसे सर्वज्ञ साक्षात नहीं होने पर भी साक्षात नजर आते हैं। वो अंजन चोर ने अकेली दीक्षा ही नहीं ली, वो मुनि बने, छठे सातवें गुण स्थान में झूला झूलते थे, बन बन में निवास करते थे, और अंत में आत्मा की साधना करके कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। कहां से निर्वाण प्राप्त किया? कैलाश पर्वत से। किसने बच्चों? किसने? अंजन चोर ने। मेरे सारे दिन यही विचार चल रहा, यही विकल्प, एक चोर व्यक्ति हार चुरा के भाग रहा है और उसी भव से निर्वाण प्राप्त कर रहा है, ये किसका बल है? ये किसका बल है? ये जैन दर्शन में संशय नहीं, निशंकित अंग का बल है। आप आज प्रयोग करो, आप जब यहां से निकल के जाओ तो जगत को सर्वज्ञ की दृष्टि से देखो, जिनेंद्र की दृष्टि से देखो, आपको सारा जगत झूठा नजर आएगा। लेकिन एक बार जिनेंद्र कथित तत्व का अभ्यास कर लिया, जिनेंद्र कथित, अब गुरुदेव देखो, लोगों ने उन्हें डराया, धमकाया, आपका रोटी पानी बंद कर देंगे, कि अरे ये रोटी के लिए मैंने दिगंबर धर्म अंगीकार नहीं किया, शासन परम सत्य विश्वास ना हो तो कैसे मालूम पड़े कि गुरुदेव श्री विदेह क्षेत्र में थे? आपको पता है कुंद आचार्य जब विदेह क्षेत्र गई तब वहां पर यहां भरत क्षेत्र में हल्ला मच गया कि कुंद कहां गई, कुंद कहां गई, तो अवधि ज्ञानियों ने यह कहा कि महापुरुष अपने कार्य को पूर्ण हुए बिना नहीं जाते, वो वापस जरूर आएंगे। जब वापस आई तो आज भी कई लोगों को श्रद्धा नहीं है कि कुंद विधि क्षेत्र गई, लेकिन ये हमें किसके बल से श्रद्धा है? आगम के बल से श्रद्धा है, गुरु के बल से श्रद्धा है। इस देह के अंदर आत्मा है, ये कैसे विश्वास हो? हम इतनी सूक्ष्म बातें सुनते हैं कि राग से भिन्न आत्मा है, लेकिन मैं आत्मा हूं, ये त्रिकाल विश्वास जीव को कब होगा? त्रिकाल विश्वास कि जब आत्मा के अनुभव उसको हो जाए। इसलिए पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तो भी कभी जैन दर्शन में, देव शास्त्र गुरु में, जिनेंद्र के बताए तत्व में संशय नहीं करना। समझ में नहीं आए ये बात अलग है, लेकिन कभी संशय नहीं करना। कोई भी प्रश्न हो, हर प्रश्न का समाधान जैन शासन में है, हर प्रश्न का समाधान है, आप देखिए। लेकिन वो अंजन चोर को निर्वाण हुआ, और निर्वाण ही नहीं हुआ, उसके उज्ज्वल चरित्र को स्वयं समंत भद्र आचार्य जैसी रतन कर्ण सावकाचार में लिख रहे हैं कि अंजन चोर निसंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ। मेरा प्रश्न है, तो क्या और कोई निसंकित अंगधारी नहीं थे? थे, लेकिन एक साधारण चोर को इतनी श्रद्धा हो गई, इसलिए आचार्यों ने अंजन चोर का नाम लिखा। मुनिराजों को भी श्रद्धा होती है, सैकड़ों ज्ञानी थे उस समय, सैकड़ों आचार्य थे, सबको श्रद्धा थी, लेकिन एक चोरी करने वाला व्यक्ति और उसको भी जैन दर्शन पर ऐसा अटूट विश्वास हो जाए, परम विश्वास हो जाए, ये कोई साधारण बात है नहीं। अब किसी को कोई प्रश्न हो इस निसंकित अंग के विषय में, जिसको निसंकित अंग होता है उसको सत्य भय नहीं होती। क्या बोला? उसको मरण का भय नहीं होता कि मैं मर के, मेरा मर गया तो मैं कहां जाऊंगा, अचानक किसी पाकिस्तान ने बम पटक दिया तो मेरा क्या होगा, ऐसा उसको अंदर से संशय नहीं होता रंच मात्र भी। मान लो अभी कोई बम पटक दी तो बताओ मुमुक्षुओं का क्या होगा, बोलो गुरुदेव के भक्तों का क्या होगा यदि किसी ने बम पटक दिया तो? कुछ नहीं, कुछ नहीं से काम नहीं चलता, सबका समाधि मरण होगा। क्यों? क्योंकि जिसे ये विश्वास है कि मैं अमर चैतन्य तत्व हूं, उसको कौन मार सकता है? अकस्मात भय नहीं होता। अकस्मात भय समझते क्या होता है? जैसे किसी का बच्चा स्कूल गया और अब वो अभी तक समय पर नहीं आया, तो मां मनी मन में बार बार घड़ी देखती है, अब तो एक घंटा हो गया, अब कैसे नहीं आया, कैसे नहीं आया, गाड़ी वाला भी फोन नहीं उठा रहा, लगता है एक्सीडेंट हो गया, अब तो किसी हॉस्पिटल में होगा, तो अब वो पुलिस वाले का नंबर खोजने लगती है। अंदर से उसको भय सताता है, डर सताता है अंदर से, देखे तो पप्पू आके सो गया था और वो बेड पर सो रहा है शांति से। अकस्मात भय नहीं होता ज्ञानी को, परलोक का भय नहीं होता कि मैं मर के कहां जाऊंगा, उसको मेरी कोई गुप्त बात प्रकट ना हो जाए इसका डर नहीं होता, उसको कहा है अगुप्ति भय। रक्षा का भय नहीं होता, मेरी कोई रक्षा करेगा या नहीं करेगा। वन जंगल में मुनिराज घोर तप करते हैं, कठोर तप करते हैं, लेकिन रंच मात्र भी उनको डर नहीं लगता। शेर घूमते हैं, चूहे बिल्ली जंगली घूमती हैं, इनको रंच मात्र डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको निशंकित अंग होता है। ये निशंकित अंग ऐसा गजब का है, ये तो मैंने बहुत स्थूल रीति से बच्चों की वजह से ये प्रस्तुत किया है, आप इसका प्रयोग करो साइकोलॉजिकल, अभी अभी यहां बैठकर। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाकर प्रयोग करना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका मुझे पक्का विश्वास है या नहीं है। ये तन खाने से नहीं चलता, आयु कर्म से चलता है, ऐसा विश्वास है या नहीं है। मेरा एक घंटे बाद क्या होगा जीवन, जो सर्वज्ञ ने देखा है वैसा होगा, ऐसा हमको विश्वास है या नहीं है। स्वयं अपने मन को तलाशो, अपने मन का ऑपरेशन करके देखो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे अंदर कहीं संशय तो नहीं बसा, डर तो नहीं बसा। तो आज इस निशंकित अंग की कथा सुनकर अपने मन का संशय मिटाएं, सच्चे देव गुरु धर्म के परम भक्त बने। एक छोटी सी इसमें बात कहके मैं इसको विषय को पूरा करूंगा। आपने उनका नाम सुना होगा, राम का नाम सुना है? नहीं सुना है, सबने सुना है। राम लक्ष्मण जब वनवास पर थे तो रास्ते में गांव में आग लग गई थी, पूरा गांव जला हुआ था और एक बूढ़ी मां रो रही थी। तो राम लक्ष्मण सीता ने उनसे पूछा, मां क्यों रोती हो, किसी ने तुमको कुछ कहा है क्या? पद्म पुराण में आता है ये घटना। तब उस मां ने कहा कि बेटे मैं क्या बताऊं तुम्हें, इस गांव का राजा धर्मी है, धर्मी था, और उसने एक खोटे राजा को नमस्कार नहीं किया। जो देवशास्त्र गुरु का विरोधी था, तो उस राजा ने हमारे इस राज्य में आग लगा दी और हमारे राजा को बंदी बना लिया है। ये घटना पद्म पुराण में आती है। उन राजा का नाम वो था वज्रकर्ण। राजा का नाम वज्रकर्ण था। जैन देव गुरु धर्म का परम भक्त था, परम भक्त। इधर लक्ष्मण ने जाकर उस दुष्ट राजा को बंदी बनाया। तो जब उस राजा ने उसके गांव में आग लगाई थी, पूर्व की घटना है ये, तब राम लक्ष्मण ने उनसे पूछा कि इस गांव में आग कैसे लगी और तुमको बंदी कैसे बनाया। कि महाराज, मैं इस राजा के अधीन रहता था, लेकिन ये देव गुरु धर्म का निंदक था, इसलिए मुझे इसको नमस्कार करने में शर्म महसूस होती थी। तो मैंने अंगूठी में प्रतिमा बनाई और डेली उसको नमस्कार करता था। क्योंकि पापी को नमस्कार नहीं करना। राजा को पता पड़ गया तो उसने मुझे बंदी बनाया। तो उस समय उसने एक वाक्य बोला था कि या तो तुम मुझे नमस्कार करो, वरना मैं तुम्हारे पूरे गांव में और राज्य में आग लगाकर तुम्हें बंदी बना लूंगा। तो उस पद्म पुराण में एक वाक्य आता है कि राजन, तू मुझे मौत की धमकी देता है, तो सुन, जैसे भौरा पागल हो जाने पर भी कमल पर ही बैठता है, गधे की पूंछ पर नहीं बैठता, भौरा होता है ना, उसी तरह ज्ञानी संकट में आने पर भी उचित जगह ही नमस्कार करता है, कुछ स्थान में कभी नमस्कार करता नहीं है। उसके पूरे गांव में आग लगा दी, पूरे गांव की प्रजा भाग गई और उसको जाकर बंदी बना लिया। और डेली मेरे को ही त्रास देता है कि मुझे नमस्कार कर। ऐसे घोर संकट आने पर भी निशंकित अंग का धारी सच्चे देव गुरु धर्म को छोड़कर अन्य जगह मस्तक नहीं झुकाता। हम कितनी बात बताएं आपको, इसमें हमारा तो मन एक मिनट में ही कोई दो लड्डू भी दे तो लोभ के कारण वहीं झुक जाए ये जीव। यदि कोई तीन लोक का शासन भी देने आए, तीन लोक का शासन, बच्चों समझ में आ रहा है, तीन लोक का शासन देने आए और ये कहे कि सच्चे देव गुरु धर्म को छोड़कर इधर नमस्कार कर दो, बोलो नमस्कार करोगे या नहीं करोगे। बात स्थूल है लेकिन जैन दर्शन की एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री नहीं बल्कि निशंकित अंग, हमारे अंदर निशंकित अंग है या नहीं, ये इस बात का सूचक है। बहुत बातें हैं, यदि निशंकित अंग है उसके चित्त में, वो तो वैसे अन्य अंग में भी आएगी ये बातें, तो वो अन्य जगह नहीं जाएगा। आप जयपुर जाते हैं, जयपुर, और जयपुर में मान लो बिरला मंदिर है, सब दर्शनीय है, तो वो देखने जाएगा नहीं जाएगा? अरे बोलो, बोल नहीं रहे, अंदर से डर लग रहा है उसको, ऐसा लग रहा है। अब हम तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखने गए थे, हिस्टोरिकल स्थान है इसलिए देखने गए थे कि नहीं, यदि वो सच्चे देवगुरु धर्म का भगत है और उसे जिन दर्शन पर अटूट विश्वास है, तो कौतूहल वश भी वो अंदर नहीं घुसेगा। कौतूहल वश भी, यदि यहां तक बोलते थे हमारे युगलजी बाबूजी, तो अभी तो स्वर्गवास हो गया, कि टीवी में जिन्होंने रामायण देखी थी उस समय, वो सब गृहित मिथ्यात्व का पोषण किया। बोले कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसा कैसे होगा, वो गृहित मिथ्यात्व कैसे हो जाएगा, वो तो एक सीरियल था। तो हमारे यहां तो राम भगवान हुए हैं, हनुमान जी ने मुनि दीक्षा ली है, और वहां हनुमान जी के, हमारे यहां हनुमान बाद में दीक्षा ली और पहले वो कामदेव थे, और उनकी हजारों शादियां हुई है, उनको धनुष तीर वाला दिखाया है और हनुमान जी को बंदर दिखाया है। तो तद्भव मोक्ष गामी को तुम बंदर के रूप में देख रहे हो, तो ये जिनवाणी का अपलाप हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो, कल को कोई आपके पिता का चेहरा बिगाड़ के उसका फोटो दिखाए तो तुम उसे देखना पसंद करोगे क्या? इतनी बातें हैं। हम समझते तो ये है कि हम बहुत गहरा पढ़ रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा मन कमजोर है, मन में हमारी संशय है, मन में हमारे पाप छिपा है। इस निशंकित अंग और अंजन चोर की दृढ़ता को समझकर मन में आज ये प्रतिज्ञा लेकर जाना कि सच्चे देवगुरु धर्म का ही सेवन करेंगे, सच्चे देवगुरु धर्म के बताए मार्ग पर ही चलेंगे, और सच्चे देवगुरु धर्म ने जो तत्व बताया उसको निर्णय से स्वीकार करके प्राण जाने की कीमत पर भी इस जैन मत से नहीं डिगेंगे। इसी भावना के साथ अभी का निसंकित अंग और अंजन चोर की कथा यहीं समाप्त होती है। जिनवाणी स्तुति क्या क्या लेते हैं अभी आपके यहां?